हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रांत की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ तारा पर ही थी। वो सोच रहा था कि जरूर तारा उन फूलों मुरझाए हुए फूलों को देखकर रो रही होगी, परेशान होगी, इसीलिए वो उठकर यहाँ से चली गई थी। लेकिन उसने एक बार भी अपने आसपास चारों ओर खिले हुए बगीचे को नहीं देखा था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तारा को ही देख रहा था। भले ही उसे उसका बैकसाइड दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने उसे देखना एक पल के लिए भी मिस नहीं किया था। और जैसे ही तारा वहां आकर बैठी और विक्रांत ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, तो वो हैरान रह गया, क्योंकि अभी तक उसे तो लगा था कि तरह रोती हुई आएगी और फिर वो उसको सहारा देगा, इसी बहाने से वो उसे गले से लगा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। विक्रांत रंधावा अच्छी तरह से जानता था तारों को छोटी छोटी चीज़ों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी। और वैसे भी विक्रांत ने राक्षस के रूप में परीलोक में जब तारा को पहली बार देखा था, तब भी तो उसने उसे बगीचे में ही देखा था। जब वो वहाँ परीलोक के पेड़ पौधों के साथ खेल रही थी और परीलोक में जितने भी पेड़ पौधे पत्तियाँ थे वो सब बोलते हुए थे, तो तारा उन सबके साथ बड़े ही मस्तियाँ किया करती थी। और आज उसने एक बोलता हुआ पौधा फूल इस बगीचे में भी लगा दिया था, तो तारा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तारा के चेहरे की चमक देखकर विक्रांत खुद को रोक नहीं पाया और बोला था, क्या हुआ तारा जी, आप इतना खुश क्यों नज़र आ रहे हैं? जबकि अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रही थीं कि आपका गार्डन मुरझा गया है। कहाँ से मुरझा गया है गार्डन, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तारा को लगा था कि विक्रांत एक मामूली इंसान है, इसीलिए उसे मुरझाया हुआ बगीचा नहीं दिखाई दिया था। या फिर शायद उसे रक्षास के अंश ने उसे बगीचे को केवल तारा के लिए मुरझाया होगा, तो इसीलिए तारा ने विक्रांत से कहा था, अरे नहीं नहीं विक्रांत जी, कुछ नहीं, वो बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। बगीचा तो कहीं भी मुरझाया हुआ नहीं है, वो देखो कितना खूबसूरत बगीचा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जैसे ही विक्रांत ने बगीचे की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि तारा ने अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा उसे बगीचों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। अब विक्रांत का गुस्से के मारे तो बुरा हाल हो ही गया था, तो इसीलिए उसने एक बार फिर से अपने जादू मंत्र का प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन तारा के सुरक्षा चक्र को उसका जादू मंत्र नहीं भेद पाया था और वो बगीचे को फिर से बदसूरती में नहीं बदल पाया था। और अब इससे पहले कि विक्रांत तारा को कुछ कहता, तभी करिश्मा जी और अमन वहां आ गए थे। और उन दोनों को वहां देखकर अमन उनके पास ही चला गया था और वहीं बैठ गया था और बोला था, क्या बात है हो रही है? तभी तारा ने अमन से कहा था, कुछ नहीं अमन सर, मैं तो केवल बगीचे की खूबसूरती को देख रही थी। विक्रांत जी से कुछ भी बात करने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही अमन ने ये सुना, वो हैरानी से तारा की ओर देखने लगा था और बोला था, ओफो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा दोस्त आपसे बात करने के लिए यहाँ बैठा हुआ था और आपने उसे देखा तक नहीं, ये गलत बात है आपकी। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो गई और बोले थी, आई एम सॉरी विक्रांत जी, वो बगीचा इतना खूबसूरत लग रहा था कि मेरा आप पर ध्यान ही नहीं गया। तारा मनी थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा था। तब विक्रांत ने कहा, अरे नहीं नहीं तारा जी, कोई बात नहीं। तभी करिश्मा, जो कि तारा, विक्रांत और अमन तीनों को ही देख रही थी, वो भी उनके पास जाकर बैठ गई थी और बोली थी, अच्छे तारा बेटी, अब तुम क्या खाना पसंद करोगे? आज हमने सोचा है कि आज हम लोग कोई भी खाना घर पर नहीं बनाएंगे, बल्कि बाहर से मंगवाएंगे। हालांकि हमारे पास ऐसे ऐसे शेफ मौजूद हैं जो हर तरह का खाना बनाने की क्वालिटीज़ रखते हैं, लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा कि हम लोग घर पर कुछ बनाएं। हम सब फैमिली एक साथ हैं तो आज हम बाहर से खाना मंगवाएंगे। करिश्मा जी की बात सुनकर तारा खिल उठी थी और बोली थी, मॉम आप क्यों परेशान होती हो, आज का सारा खाना मैं बनाऊंगी। क्या या जैसे ये सब अमन और करिश्मा और ने ये बात सुनी, वो हैरानी से तारा की ओर देखने लगे थे और बोले थे, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो तुमने हमें आज तक बताया क्यों नहीं? तब तारा ने बड़ी ही मासूम सी शक्ल बनाकर करिश्मा जी की ओर देखते हुए कहा था, वो मॉम कभी बताने का मौका ही नहीं मिला, पर हाँ मुझे तो खाना बनाना आता है। जबकि तारा को किसी तरह का कोई खाना बनाना नहीं आता था। करिश्मा जी ने तारा से कहा, हो तो फिर तो हम आज आपके हाथों की खीर खाना पसंद करेंगे। जैसे ही करिश्मा जी ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, तारा ने उन्हें कहा, ये फिर बस डोंट वरी, मैं अभी आप सभी के लिए खीर बना कर लाती हूँ। तब करिश्मा जी ने तारा का हाथ पकड़ते हुए कहा था, रुको रुको, जरा ठहरो, मैं जानती हूँ आपको बहुत जल्दी है खाना बनाने की, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तुम्हें कुछ भी ऐसे काम नहीं करना है जिससे आपको थकावट हो। आपको बहुत ही ज्यादा आराम की जरूरत है। तुम अपने आप को कोई नुकसान नहीं होने दोगी। पहले आपको हमें प्रॉमिस करना होगा, तभी हम आपके किचन में भेजेंगे खाना बनाने के लिए। करिश्मा जी के इतने प्यार और केयर को देखकर तारा की आंखें भर आई थी और करिश्मा जी को जोरों से गले लगाते हुए बोली थी, ओ मॉम, आप तो बिल्कुल मुझे छोटी सी बच्ची समझते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं अपने आप को जला लूंगी या मैं फिर कुछ नुकसान कर लूंगी? आई नो, और वैसे भी आपका ये जो वंशज है इतना पावरफुल है कि मुझे कुछ नहीं होने देगा। सर, डोंट वरी। तारा ने जानबूझकर करिश्मा जी को वंशज का नाम लिया था ताकि वो उसकी फिक्र करना छोड़ दे, क्योंकि करिश्मा जी भी कहीं ना कहीं इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि जब तक तारा के पेट में बच्चा है, वो कोई भी उसे कैसे भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। तब करिश्मा जी ने तारा से कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, तुम जाओ और जल्दी आना, तब तक हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। तारा ने एक नज़र अमन की ओर देखा और मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। विक्रांत की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ तारा पर ही थी। जब तारा ने अमन की ओर देखा लेकिन उसकी ओर नहीं देखा, तो ये बात भी विक्रांत को बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस वक्त अमन की जान ले ले, लेकिन वो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, ये बात अच्छी तरह से जानता था। तभी विक्रांत ने सोच लिया था, क्योंकि अमन और करिश्मा जी यहाँ है तो क्यों ना वो बातों ही बातों में अपनी माँ का पता उनसे पूछे। तब विक्रांत ने बोलना शुरू किया था, अच्छा अमन, तुमने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी वगैरह कहाँ कहाँ तक की खरीदी हुई है? मैं सोच रहा था कि एक बार मैं यहाँ के ही प्रॉपर्टी को एक बार देख लूँ, अगर मुझे पसंद आ जाती है तो अपनी नई फैक्ट्री में यहीं पे स्टार्ट कर सकता हूँ। विक्रांत ने जानबूझकर अपने पर्सनल काम को प्रोफेशनल काम का रूप दे दिया था, क्योंकि वो करिश्मा जी की नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था और कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि करिश्मा जी उसे कुछ ज्यादा ही गहरी नज़रों से देख रही है। वहीं विक्रांत की बात सुनकर अमन बोला था, यार आप प्रॉपर्टी तो इतनी सारी है कि मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ कहाँ पर है। तब विक्रांत ने अमन पर जोर देते हुए कहा था, अच्छा तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो मतलब ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में ना हो, वो कुछ अलग से हो, क्योंकि मैं भीड़भाड़ वाले इलाका कुछ खास पसंद नहीं करता हूँ। विक्रांत ने जानबूझकर ऐसे ही इलाके का जिक्र किया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था अगर अमन ने उसकी माँ को कहीं अगवा करके रखा हुआ होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कहीं शांत और अकेली जगह पर ही रखा होगा,
क्योंकि वो भी भीड़भाड़ वाले इलाके में अपनी उसकी मॉम को रखकर अपने लिए मुसीबतें पैदा नहीं करना चाहेगा। इस बात का विक्रांत को पूरा पूरा यकीन था। अब विक्रांत की बात सुनकर करिश्मा जी कुछ हैरान सी हो गई थीं, लेकिन फिर बोल पड़ी थीं, अरे भाई, तुम दोनों बच्चे क्या अब प्रोजेक्ट, जमीन, प्रॉपर्टी और कंपनी की बातें लेकर बैठ गए हो? आज हम लोग यहाँ फैमिली टुगेदर के लिए साथ बैठे हैं, तो हम सिर्फ फैमिली के बारे में बातें करेंगे, अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, और ये तुम लोगों का बिजनेस वगैरह तो ऑफिस में चलता रहता है ना, तो घर पर ऑफिस खोलने की क्या जरूरत है? करिश्मा जी ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा था। वहीं विक्रांत करिश्मा जी की बात सुनकर अंदर ही अंदर तप कर रह गया था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। वो अच्छी तरह से जानता था अगर उसने कुछ बोला तो वो उसके लिए काफी ज्यादा पेनफुल हो सकता था, और उसे वक्त किसी भी तरह से रिस्क लेने के मूड में नहीं था। अपनी मॉम की बात सुनकर अमन भी मुस्कुराने लगा था और बोला था, अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है मॉम, अगर आप चाहती हैं कि हम कोई बिजनेस वगैरह की बातें ना करें तो हम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें गुस्सा होने वाली तो कोई बात नहीं है ना, और आप प्लीज आप अपना मूड ठीक रखिए। अमन को अपनी मॉम के मूड की बहुत ही ज्यादा चिंता थी। वो अपनी मॉम के मूड को लेकर हमेशा से ही काफी ज्यादा पजेसिव रहा था, क्योंकि उसे करिश्मा जी का दुखी होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अमन की बात सुनकर करिश्मा की मुस्कुराने लगी थी, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी थी। विक्रांत गहरी गहरी नजरों से उन दोनों माँ बेटे के प्यार को देख रहा था। उसे अब शिद्दत से अपनी माँ की याद आने लगी थी, क्योंकि विक्रांत को लगने लगा था कि उसकी माँ ही अब उसे सही रास्ता दिखा सकती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तारा से सीधा सीधा मुकाबला करे या फिर सबसे पहले अमन और तारा को अलग करने की कोशिश करे, क्योंकि क्योंकि अमन की जान लेना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन जब तक तारा और अमन अलग नहीं होंगे, वो तारा के साथ जिस्मानी रिश्ता नहीं बन पाएगा, और जब तक तारा के साथ जिस्मानी रिश्ता नहीं बनेगा, उसके पेट में जो बच्चा है वो नहीं मर पाएगा। विक्रांत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और अब तो करिश्मा जी ने भी वहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह की बात करने से साफ साफ मना कर दिया था, तो अब वो चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी ओर तारा परी किचन में पहुँच चुकी थी।
कुकु, थैंक यू सो मच।